प्रिय श्रोताओ नमस्कार। हमेशा की तरह आपका मनपसंद बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन लेकर एक बार फिर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम में से पौलुस प्रेरित द्वारा लिखी पहला थिस्सलुनीकियों नामक पत्रिका गहराई से अध्ययन कर रहे हैं और श्रोताओ हम विश्वास करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। तो आइए अपने इस बाइबल अध्ययन को सुने और जीवन के लिए आत्मिक मार्गदर्शन प्राप्त करें। प्रस्तुत है आज का ये कार्यक्रम सत्य वचन।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के मधुर और सामर्थ्य नाम में आप सबको पुनः मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूँ, विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम इन दिनों बाइबल में से पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन कर रहे हैं जिसका लेखक पौलुस है। तो मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और 5 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे, लेकिन इससे पहले आइए हम सब प्रार्थना करें और आज के अध्ययन के लिए परमेश्वर से सहायता मांगें। प्रेमी और दयालु पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आपके जीवित और सामर्थ्य वचन के लिए जिसके द्वारा से आप हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, हमें सिखाते और समझाते हैं। आज जब हम फिर से आपके वचन में से सीखना चाहते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान करें ताकि आज हम जो कुछ भी सुनते हैं निश्चित रूप से आपका वचन प्रत्येक के जीवन में कार्य करने पाए, हर एक प्रकार की बुराइयों से, व्यर्थ की बातों से, शैतान के छल प्रपंच से आप प्रत्येक की रक्षा करें। उनके जीवन की जरूरतों को आप जानते हैं, उनके जीवन से आप बोले और बातचीत करें। पिताजी, हमारी प्रार्थना उन भाई बहनों के लिए है जो निराश हैं, चिंतित हैं, परेशान हैं, बीमार अवस्था में हैं, नौकरी की तलाश में हैं, जीवन साथी की तलाश में हैं। आप उन पर भी अपनी अनुग्रह प्रदान करें, उनके जीवन में अपनी शांति दे। आज के वचन के द्वारा सबसे बोले और बातचीत करें। धन्यवाद हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 1 से 10 पद तक का अध्ययन करेंगे जिसका विषय है मसीह का आगमन एक उत्साहवर्धक आशा है। पहला थिस्सलुनीकियों के इस अंतिम अध्याय में हम प्रभु यीशु के आगमन की तैयारी में मसीही आचरण को देखते हैं। यदि हमारा स्वभाव कर्मों में प्रदर्शित न हो तो गंभीर समस्या है। प्रभु यीशु का आगमन एक उत्साहवर्धक आशा है, जी हाँ, जो हमें कुछ करके दिखाने की प्रेरणा देती है। मसीह के आगमन के प्रति सजग एवं सावधान, मसीह के विश्वासी को उसके आगमन के लिए सजग एवं सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि विश्वासी महाक्लेश की भयानक रात में प्रवेश नहीं करेंगे। महाक्लेश को प्रभु का दिन भी कहते हैं। प्रभु का दिन रात से आरंभ होता है क्योंकि यह परमेश्वर के समय के अनुसार है। उसने उत्पत्ति के समय भी ऐसा ही किया था, सांझ हुई फिर भोर हुआ, इस प्रकार पहला दिन हो गया। परमेश्वर अंधकार से आरंभ करके ज्योति की ओर बढ़ता है, अतः महाक्लेश मसीह के महिमामय सहस्त्र वर्षीय राज्य में अंत होगा, जब धार्मिकता का सूर्य अपने पंखों में चंगाई लेकर आएगा। तब हम देखेंगे प्रभु का दिन एक ऐसी अभिव्यक्ति है जिसका हमें परीक्षण करना होगा। तो आइए हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसका 1 पद लिखा है, पर हे भाइयों, इसका प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए। ध्यान दीजिए, समयों और कालों। यह कलीसिया की संपत्ति नहीं है, वे इस पृथ्वी और पृथ्वीवासियों के लिए है। उस दिन इसराइली और अन्य जाति दोनों उद्धार पाएंगे। कलीसिया समयों और कालों की नहीं, एक व्यक्ति की प्रतीक्षा में है। जी हाँ, पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:2 में लिखा है, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है, वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है। प्रभु यीशु रात में चोर के समान कलीसिया में नहीं आएगा। कलीसिया प्रभु यीशु के आने की प्रतीक्षा में है। आप चोर की प्रतीक्षा नहीं करते हैं और न ही उसके लिए संदेश लिखकर द्वार पर छोड़ते हैं। श्रीमान चोर महोदय, मैंने पिछला द्वार आपके लिए खुला छोड़ दिया है। अलमारी खुली है और उसमें आभूषण रखे हैं। मेरे विचार में तो आपने ऐसा कभी नहीं किया होगा और न कभी करेंगे। इसके विपरीत बाहर जाते समय आप सुनिश्चित करते हैं कि सब दरवाजे बंद हैं या नहीं, और ताले अच्छी तरह से लगे हैं या नहीं। आप चोर से पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहते हैं। प्रभु यीशु कलीसिया में एक चोर के समान नहीं आएगा, परंतु कलीसिया के उठाए जाने के बाद प्रभु यीशु एक चोर के समान इस संसार में आएगा। जैसा मैं कह चुका हूं, प्रभु का दिन अचानक ही पृथ्वी पर आएगा और महाक्लेश की रात से आरंभ होगा। इसके पश्चात प्रभु यीशु स्वयं इस पृथ्वी पर आएगा। मेरे प्रियो, आगे हम देखेंगे प्रभु का दिन अचानक ही आ पड़ेगा। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:3 में लिखा है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। मेरे मित्रों, क्या आप यहाँ सर्वनामों में परिवर्तन देखते हैं? पहले 2 में पौलुस भाइयों को संबोधित करता है और कहता है कि उसे समयों और कालों की चर्चा करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि कलीसिया का उनसे संबंध नहीं है। वे तो उस समय संसार से कूच कर जाएंगे। अब 3 में सर्वनाम बदलकर लोग हो जाता है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रभु का दिन वह काल है जो महाक्लेश के समय से आरंभ होकर पृथ्वी पर प्रभु राज्य में चलेगा। धर्मशास्त्र के अनेक अंश इसकी चर्चा करते हैं। उदाहरण स्वरूप हम देखते हैं यशाया की पुस्तक 12:13, जिसमें आप पढ़ेंगे कि परमेश्वर समाज और देश, सेना और व्यापार तथा कला एवं ठाट बाट और घमंड एवं धर्म को कैसे दंड देगा। यशाया की पुस्तक 13:9 में लिखा है, देखो यहोवा का वह दिन रोष और क्रोध और निर्दयता के साथ आता है, कि वह पृथ्वी को उजाड़ डाले और पापियों को उसमें से नष्ट करे। उसका आरंभ प्रकोप के दिन से होता है। यशाया की पुस्तक 13:10 में लिखा है, क्योंकि आकाश के तारागण और बड़े बड़े नक्षत्र अपना प्रकाश न देंगे, और सूर्य उदय होते होते अंधेरा हो जाएगा, और चंद्रमा अपना प्रकाश न देगा। योएल नबी की पुस्तक 1:15 में भविष्यवाणी है, उस दिन के कारण हाय, क्योंकि यहोवा का दिन निकट है, वह सर्वशक्तिमान की ओर से सत्यानाश का दिन होकर आएगा। और 2 में योएल नबी कहता है, अंधकार और विषाद का दिन, बादलों और गहन अंधकार का दिन। पुराने नियम में प्रभु के दिन का यह दृश्य प्रस्तुत किया गया है। प्रभु का दिन महाक्लेश से आरंभ होकर सहस्त्र वर्षीय प्रभु राज तक जाता है। पुराने नियम का यही विषय है। मेरे प्रियो, 4 में प्रभु के आगमन और कलीसिया के उठाए जाने का उल्लेख कहीं भी नहीं है, परंतु प्रतीकों में अवश्य प्रकट है, जैसे हनोक और एलिया का सा अनुभव। ये दोनों ही जीवित उठा लिए गए थे, परंतु जन समूह के जीवित उठा लिए जाने का उल्लेख नहीं है कि प्रभु यीशु उन्हें अपने साथ ले जाएगा। यह एक महिमामय सत्य है जिसका उल्लेख प्रभु यीशु ने स्वयं अपने मुख से किया था। योहन्ना रचित सुसमाचार 14 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, यदि न होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। जहां तक मैं जानता हूं, धर्मशास्त्र में यह सत्य पहली बार प्रकट किया गया है और पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 4 अध्याय में इस पर सविस्तार विचार किया है। परंतु अध्याय 5 में जो वह कह रहा है वह पुराने नियम का चीर परिचित विचार है। जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। संसार के लिए यह एक आश्चर्यजनक घटना होगी, उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की होगी। थिस्सलुनीकियों की दूसरी पत्री के 2 अध्याय में झूठ का उल्लेख किया गया है और वह मेरे विचार में शांति और सुरक्षा की प्रतिज्ञा है। प्रभु यीशु ने चेतावनी दी है कि कोई हमें भरमाने ना पाए। संसार को शांति के महान युग प्रभु राज में प्रवेश करने की आशा है, परंतु वे एकाएक महाक्लेश में, महाविपत्ति में पड़ जाएंगे। यह महाक्लेश संसार का सबसे महान युद्ध होगा। यह रात के चोर के समान एक आकस्मिक घटना होगी जो बहुत ही भयानक होगी। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 4 और 5 पद में हम पढ़ते हैं, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम न रात के हैं न अंधकार के हैं। जी हाँ, यहां पर स्पष्ट कहा गया है कलिसिया के उठाए जाने के समय 2 घटनाएं घटेंगी। पहला, अनुग्रह के इस युग का अंत हो जाएगा। आज परमेश्वर अपने नाम के निमित्त मनुष्यों को बुला रहा है और अनेक पुत्रों को महिमा में घर बुला रहा है। और दूसरी घटना है कलिसिया का उठाया जाना, प्रभु के दिन का आरंभ करेगा। कलिसिया के उठाए जाने पर महाक्लेश, महाविपत्ति का आरंभ होगा। अनुग्रह के युग का अंत होगा और प्रभु के दिन का आरंभ होगा। एक दिन समाप्त होगा और दूसरा दिन आरंभ होगा। लिखा है, पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम पर चोर के समान आ पड़े। ऐसा कैसे होगा? क्योंकि हमने अध्याय 4 में देखा है कि प्रभु ललकार के साथ स्वर्ग से उतरेगा और हमें अपने साथ ले जाएगा। अतः उस समय हम यहां पर नहीं होंगे। तब हम आगे पढ़ेंगे, तुम सब ज्योति की संतान हो, अर्थात तुम उस आने वाले युग में यहां नहीं रहोगे, तुम अनुग्रह के वर्तमान युग में हो। मेरे मित्रों, यदि आप धर्मशास्त्र में प्रकट इस अंतर को नहीं समझ पाएंगे तो उलझन में पड़ जाएंगे। मैंने बाइबल अध्ययन करते समय कुछ विद्यार्थियों से अधिक किसी और को उलझन में फंसा हुआ नहीं देखा है। एक ने तो मुझसे यहां तक कह दिया कि उसने भविष्यवाणी पर ध्यान देना ही छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि वह बैठकर संपूर्ण धर्मशास्त्र का विश्लेषण नहीं करना चाहता था। प्रभु के दिन हम प्रभु यीशु के साथ होंगे, हम अंधकार में नहीं हैं। वह दिन हम पर अंधकार के चोर की नाई नहीं आ पड़ेगा। जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं उनके लिए दुखद बात नहीं है। प्रभु अपनी कलिसिया को उठाने चोर की नाई नहीं उतरेगा। कलिसिया उस धन्य आशा और हमारे महान परमेश्वर एवं उद्धारकर्ता की बाट जोहती है। अब पौलुस विश्वासियों से प्रबोधन करता है, जिसे हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 6 पद में पढ़ते हैं। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, इसलिए हम दूसरों के समान सोते न रहें, पर जागते और सावधान रहें। मेरे मित्रों, कलीसिया का उठाया जाना वह धन्य आशा किसी भी समय हो सकता है, अतः हमें सोते नहीं रहना है। एक बार एक कलीसिया में संगीत का अगुआ कह रहा था कि हम खड़े होकर गाएं, अपने प्रभु मुक्तिदाता की प्रतिज्ञाओं पर खड़े होकर। आज के विश्वासी प्रभु की प्रतिज्ञाओं पर बैठे हैं। कुछ तो कलीसियाओं के सोने वाले खंभे हैं। पौलुस कहता है कि महाक्लेश को ध्यान में रखते हुए हम दूसरों के समान सोते न रहें। हम प्रभु के आगमन की प्रतीक्षा करते हुए विनम्र बने, जागते और सावधान रहें। मेरे विचार में हम प्रभु के आगमन के निकट ही हैं। मैं पौलुस के साथ कह सकता हूँ, रोमियो के पत्री 13 अध्याय उसके 11 पद में, जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। हम पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5 अध्याय उसके 7 और 8 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं, पर हम जो दिन के हैं विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। यहाँ वह फिर कहता है सावधान रहें, अर्थात हमें जागते रहना है, सचेत रहना है। विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। मेरे मित्रों, यह एक सैनिक का वर्णन है जो सतर्क रहता है। विश्वास और प्रेम की झिलम हृदय को सुरक्षित रखती है, क्योंकि हृदय सबसे मुख्य अंग है। टोप उद्धार की आशा है। मेरे कहने का अर्थ फैशन में टोपी पहनना नहीं है, यह हेलमेट है, उद्धार की आशा का हेलमेट प्रत्येक विश्वासी को पहनना है जो उनकी रक्षा करता है। आगे कहता है विश्वास, प्रेम और आशा। ये महत्वपूर्ण शब्द इस पत्री में 3री बार व्यक्त किए गए हैं। प्रेम का परिश्रम, विश्वास के काम, आशा की धीरता। विश्वास उद्धारक विश्वास है, और उद्धारक विश्वास कर्म करने की प्रेरणा देता है। जॉन कॉल्विन ने कहा था, केवल विश्वास के द्वारा उद्धार है, परंतु उद्धार दिलाने वाला विश्वास अकेला नहीं होता है। विश्वास हमारे उद्धार के समय की ओर निहारता है, जब हमने प्रभु यीशु को ग्रहण किया था। प्रेम वर्तमान है, अर्थात विश्वासी का अपने आसपास के मनुष्यों से संबंध। उद्धार की आशा भविष्य की धन्य आशा है। हम महाक्लेश की प्रतीक्षा में नहीं है। मैं समझ नहीं पाता कि उसमें कैसे आनंद की बात होगी। हम तो उस धन्य आशा की बाट जोहते हैं जो हमारे उद्धार की परिपूर्णता होगी। हम पहला योहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसके 2 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा है, हे प्रियो, अब हम परमेश्वर की संतान हैं, और अभी तक यह प्रकट नहीं हुआ है कि हम क्या कुछ होंगे। इतना जानते हैं कि जब प्रकट होगा तो हम उसके समान होंगे, क्योंकि उसको वैसा ही देखेंगे जैसा वह है। मेरे मित्रों, परमेश्वर का काम अभी मेरे साथ पूरा नहीं हुआ है, अतः आप मेरे साथ अधीर ना हो। एक बार एक महिला ने गवाही देते समय कहा, विश्वासियों को अपनी पीठ पर लिख लेना चाहिए, यह सर्वोत्तम नहीं जो परमेश्वर का अनुग्रह कर सकता है। मुझे भी अपनी पीठ पर यह लिख लेना चाहिए, उसका काम अभी मेरे साथ पूरा नहीं हुआ है, अतः आप मेरे साथ अधीर ना हो। मैं आपके साथ अधीर नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि परमेश्वर का काम आपके साथ पूरा नहीं हुआ है। आज हम में उद्धार की आशा है, अर्थात उसने हम में जो काम आरंभ किया है उससे वह पूरा करेगा। फिलिपियों के पत्री 1 अध्याय उसके 6 पद में पौलुस लिखता है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु के दिन तक पूरा करेगा। तब हम आगे पढ़ते हैं पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:9 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं ठहराया है। यह तो सहस्त्र वर्षीय राज्य को न मानने वालों को भी समझ लेना चाहिए। पता नहीं क्यों वे किसी कारणवश इससे चूक जाते हैं। क्रोध महाक्लेश का समय है, वह दंड का समय होगा और कलीसिया उसमें नहीं होगी, क्योंकि हमारा दंड प्रभु यीशु ने भोग लिया है, उसने उठा लिया है। आप कहेंगे, क्या आप अपने आप को उठाए जाने योग्य समझते हैं? जी नहीं, मैं तो उद्धार पाने योग्य भी नहीं हूं, परंतु परमेश्वर ने मुझे अपने अनुग्रह के द्वारा बचा लिया है, और जब प्रभु यीशु कलीसिया को लेने के लिए आएगा तब मैं भी सब ढोंगी पवित्र जनों के साथ होऊंगा, जो परमेश्वर के अनुग्रह ही के द्वारा होगा कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार को प्राप्त करें। परमेश्वर ने हमें महाक्लेश के क्रोध के लिए नहीं रख छोड़ा है, उसने हमें प्रभु यीशु के द्वारा उद्धार के लिए तैयार किया है, उसके नियत से हमें बनाया है। पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री 5:10 में हम पढ़ते हैं, वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों सब मिलकर उसी के साथ जिए। हम उसके आने तक जीवित रहें या मर जाएं, हम सदा उसके साथ ही रहेंगे। अधिकांश कलीसिया मृत्यु के द्वार को पार कर चुकी है। वह कैसा महान जुलूस होगा जिसमें स्तेफनुस और प्रेरित तथा मसीही शहीद सबसे आगे होंगे। उसके बाद वे सब जो मसीह में सो गए हैं, फिर वे सब जो जीवित हैं। मेरे प्रियो, यदि हम जीवित रहें तो सबके पीछे होंगे। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा वहां पर होंगे। ये अद्भुत सत्य आपके लिए क्या करेंगे? अगला पद है, इस कारण एक दूसरे को शांति दो। हम विश्वासियों के लिए यह कैसी शांतिदायक बात है। विश्वासियों के लिए आज्ञाएं हैं। अब हम विश्वासियों के लिए 22 आज्ञाएं देखेंगे। उद्धार पाने तक तो हम केवल क्रूस तक ही सीमित थे। परमेश्वर हमसे एक ही प्रश्न पूछ रहा था, तू मेरे पुत्र के साथ क्या करेगा जो तेरे लिए मर गया? परंतु प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करने के बाद परमेश्वर हमारे जीवन आचरण के विषय में कुछ कहता है। परमेश्वर की संतान जीवन के मार्ग के निमित्त 10 आज्ञाओं के अधीन नहीं है, वह उससे बहुत अधिक ऊपर है। इस अंश में दी गई आज्ञाएं प्रकट करती हैं कि उसे बहुत ऊंचे स्तर का जीवन जीना है। जी हाँ, ये आज्ञाएं दैनिक जीवन की व्यवहारिकता है। मसीह के आगमन की प्रतीक्षा करना अति अद्भुत और महिमामय बात है, परंतु यह भी अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि हम इस पृथ्वी पर भी जिए, घर में, कार्यालय में, स्कूल में, जहां भी हम हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जीवन जिए। प्रभु यीशु ने कहा था, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। कुछ मसीही जन उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं। ये 22 आज्ञाएं ऐसी हैं जैसे सेना के कड़क आदेश। पद 8 में हमें कहा गया है कि हम सावधान रहकर युद्ध के अस्त्र शस्त्र धारण कर लें। अब आदेश दिए जा रहे हैं जो वर्गीकृत हैं। सबसे संबंधित एक एक के लिए विशेष आदेश, जिन्हें हम अपने अगले अध्ययन में देखेंगे। तो मेरे मित्रों, यह बहुत ही आवश्यक है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें। आज यहाँ पर हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, परंतु मैं आशा करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा भी आपने अपने जीवन में अवश्य ही आत्मिक लाभ प्राप्त किया है। प्रभु आज के इस अध्ययन के द्वारा आप सबको बहुतायत से आशीष दे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए। कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
तेरा फजल क्या ही अजीब मेरे जीवन में बड़ा, अब तक संभाला मुझे और भी चाहिए फजल तेरा मुझे, और भी चाहिए फजल तेरा मुझे। हलीम जो हैं उन पर रहता है तेरा फजल, हलीम जो हैं उन पर रहता है तेरा फजल। इस जीवन के लिए काफी है ताकत और करने का फजल दे दे मुझे, सेवा करने का फजल दे दे मुझे। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। बच गया खतरे से मैं, ये भी है तेरा फजल। सारे पाप मेरे